नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश की हर ग्राम पंचायत पर ग्राम सेवा सहकारी समिति बना रही है। विमान यात्री अब रत्न आभूषण और मशीनरी के नमूने आयात निर्यात के लिए व्यक्तिगत सामान में ले जा सकेंगे और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी, गर्मी का असर तेज। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। सरकार इस विधेयक पर चर्चा करने और पारित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कल संसद भवन में मीडिया से बात करते हुए अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सदन में विधेयक पर चर्चा के लिए 8 घंटे आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान इस बात पर सहमति बनी है कि सदन की राय जानने के बाद चर्चा के लिए समय बढ़ाया जा सकता है।
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर ऑपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया, तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया।
श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार विधेयक पर सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कानून का विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि संशोधन विधेयक का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार के अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। सहकार से समृद्धि की भावना के साथ समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कल सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि गांवों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां बना रही है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 को प्रासंगिक बनाने के लिए नए कोऑपरेटिव कोड लेकर आएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभागीय बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बहु बैंकिंग केंद्रीकृत संग्रह प्रणाली में 15 और बैंकों को शामिल किया है। इसके साथ ही इस पैनल में शामिल सरकारी और निजी बैंकों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। कल नई दिल्ली में इस करार पर हस्ताक्षर के समय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि AFPO लगभग 8 करोड़ सदस्यों और 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ उपलब्ध करा रहा है। श्री मांडविया ने कहा कि नए शामिल 15 बैंक सालाना लगभग 12,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष भुगतान करेंगे और कर्मचारी सीधे इन बैंकों से लेन देन कर सकेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मुस्कान पहल कार्यक्रम के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल का चयन किया गया है। हमारे पाली संवाददाता ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य 12 वर्ष तक आयु के बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है।
बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के मुस्कान प्रोजेक्ट के तहत राजकीय बांगड़ अस्पताल को राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत नवजात शिशुओं को बच्चों की बीमारी और मृत्यु दर कम करना है। इसके तहत बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित किया जाता है। अस्पताल को प्रोत्साहित करने के लिए 10 से 12 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया जाएगा। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में विभिन्न कार्यों के लिए 66 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति जारी की है। इनमें मंडी यार्ड में विद्युत मरम्मत, नए निर्माण कार्य और संपर्क रोड बनाया जाना शामिल है। सरकार के इस निर्णय से भादरा, टिब्बी, रावतसर, गोलूवाला, इटावा, जैतसर, सादुलशहर और श्रीकरणपुर कृषि उपज मंडियों में करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न यार्ड विकास के कार्य किए जाएंगे। वहीं कोटपूतली, सुमेरपुर, सूरतगढ़, कोटा, श्रीगंगानगर, नागौर और गोलूवाला मंडियों में लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से संपर्क सड़कें बनवाई जाएंगी। विमान यात्री अब आयात निर्यात के लिए रत्न, आभूषण और मशीनरी के नमूने अपने व्यक्तिगत सामान में ले जा सकेंगे। इसके लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड इन नमूनों की इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग शुरू करने जा रहा है। निर्यात की व्यवस्था इस वर्ष 1 मई से 9 हवाई अड्डों पर लागू कर दी जाएगी। इनमें जयपुर सहित दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, कोयम्बटूर, बेंगलुरु और हैदराबाद के हवाई अड्डे शामिल हैं। व्यक्तिगत सामान में रत्न आभूषण का आयात जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद हवाई अड्डों पर किया जा सकेगा। मशीनरी के नमूनों का आयात निर्यात बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों से हो सकेगा। ब्यावर के बलार्ड रोड स्थित एक फैक्ट्री में हुए गैस रिसाव हादसे में मृतकों और घायलों को राज्य सरकार की ओर से सहायता राशि दी जाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख तथा घायलों को 25-25 हजार रूपये की राशि दी जाएगी। हमारी अजमेर संवाददाता ने बताया कि मंत्री ने कल अजमेर के JLN अस्पताल पहुंचकर गैस रिसाव दुखांतिका के पीड़ितों और उनके परिजनों से मुलाकात की।
प्यावर बलार्ड रोड स्थित एक फैक्ट्री में हुई गैस रिसाव के कारण फैक्ट्री मालिक सहित 3 लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई। 50 से अधिक पीड़ितों का ब्यावर और अजमेर के राजकीय चिकित्सालय में उपचार जारी है। कल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मृतकों को 1 लाख और घायलों को 25-25 हजार रूपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे से मिलकर निर्देश दिए कि ब्यावर हादसे में घायल पीड़ितों को तुरंत उपचार दिया जाए। अस्पताल प्रशासन ने इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था की है। नलमा धादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
राजस्थान रोडवेज ने जयपुर के नारायण सिंह सर्कल पर निगम के वाहनों का ठहराव और बुकिंग बंद कर दी है। जयपुर दौसा मार्ग और जयपुर दिल्ली वाया दौसा एक्सप्रेस वे पर बसों का संचालन ट्रांसपोर्ट नगर टनल के पास नए बस स्टैंड से किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए वहां 24 घंटे वाहन बुकिंग, यात्री शेड, पंखे, लाइटिंग, मोबाइल चार्जिंग पावर, वाटर कूलर सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं जयपुर दिल्ली और जयपुर अलवर मार्ग की बसों के संचालन और बुकिंग की व्यवस्था ट्रांसपोर्ट नगर ओवर ब्रिज के पास बजरी मंडी बस स्टॉप से की गई है। जोधपुर IIT ने देश में पहली बार ब्रिज इंजीनियरिंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी में एमटेक डिग्री का कोर्स शुरू किया है। पहले सत्र में प्रवेश शुरू कर दिए गए हैं। ड्रोन विशेषज्ञों की जरूरतों को देखते हुए जोधपुर IIT ने यह पहल की है। IIT जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल ने बताया कि इस पाठ्यक्रम की विशेषता है कि छात्र स्क्रैच से ड्रोन को इकट्ठा कर घटकों का विश्लेषण करेंगे और उड़ान का परीक्षण भी कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि ब्रिज इंजीनियरिंग कोर्स विशेष रूप से पुल डिजाइन, निर्माण और रखरखाव में आधुनिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अगले 1-2 दिनों में दिन और रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री बढ़ोतरी के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के कुछ हिस्सों में आज बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग में कुछ जगह मेघ गर्जन के साथ हल्की बरसात हो सकती है।
आगामी ग्रीष्म ऋतु के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज होने की संभावना है। हीट वेव की बात करें तो राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भागों में समर सीजन के दौरान सामान्य से अधिक हीट वेव दिनों की संख्या भी दर्ज होने की संभावना है। इसके अलावा आगामी 5-7 दिनों की बात करें तो 3-4 अप्रैल को पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं दिनांक 4-5 अप्रैल को दक्षिण पश्चिमी राजस्थान यानी जैसलमेर, बाड़मेर और सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 42-43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होने की संभावना है। यानी कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 5 अप्रैल से पश्चिमी राजस्थान से एक हीट वेव का स्पेल शुरू होगा और इसका जो दौर है वो अगले 3-4 दिनों तक जारी रहने की प्रबल संभावना है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश की हर ग्राम पंचायत पर ग्राम सेवा सहकारी समिति बना रही है। विमान यात्री अब रत्न आभूषण और मशीनरी के नमूने आयात निर्यात के लिए व्यक्तिगत सामान में ले जा सकेंगे और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी, गर्मी का असर तेज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।